सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब हमारा दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां सुलझ जाती हैं और हमारे लिए एक बहुत अच्छे अवसर प्रदान करती हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने मन को स्थिर रखें। हमारे इस सफर में हर बार की तरह डॉक्टर सचिन हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। नमस्ते, ओम शांति।
ओम शांति।
जैसे मैं बात बता रही थी कि स्थिर मन चाहिए, आपने भी हमको लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि अगर मन स्थिर होता है तो हम वो लेवल तक पहुंच सकते हैं जो सुप्रा कॉन्शियस माइंड कहते हैं, या उसको एक्टिवेट करना सुप्रा कॉन्शियस स्टेज को। तो वो स्थिरता कैसे आ सकती है, वो बहुत चैलेंज है क्योंकि हर चीज को हम आज इतनी अस्थिरता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, हमको कुछ पता नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप को स्थिर कैसे रखें?
सबके लिए चैलेंजिंग है क्योंकि बाहर की दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, कभी क्या होगा पता नहीं चल रहा है। मार्केट भी हम देख रहे हैं, जो इकोनॉमी, बहुत सारी बातें हमने देखी कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, लोगों की क्या अवस्था है या प्रकृति का क्या हाल है। तो नो डाउट इट इज रियली चैलेंजिंग। और कई बार हमारा दिमाग, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया उसको मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, केवल दिमाग नहीं दिल भी
जी।
दिल और दिमाग दोनों हमारे स्थिर चाहिए। दिल और दिमाग का संतुलन रखना बहुत जरूरी है और यह संतुलन रखने के लिए ही राजयोग है। तो हमारा यह अनुभव है कि चैलेंजेस है, नो डाउट अबाउट इट। परिस्थितियां ऐसे है कि जिसमें आदमी टूट सकता है या टूट भी जाता है कई बार, लेकिन वहां पर राजयोग का ज्ञान हमको मदद करता है। राजयोग, जैसे कि हमने बार बार बताया, केवल योग नहीं है। ऐसे नहीं कि केवल आप हाथ पैर बैठ के एक जगह पर बैठे हैं
और खाली ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट
कर रहे हैं या ध्यान में बैठे, वो नहीं है। राजयोग एक ज्ञान योग है। यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, परमात्मा हमको ज्ञान के आधार पर परिवर्तन कर रहे हैं। परमात्मा कोई मैजिक नहीं करते, कोई चमत्कार नहीं करते। उनका चमत्कार एक ही है कि वो सभी सीक्रेट्स जो है इस ड्रामा के, वो हमको बता रहे हैं। और जो परमात्मा ने सीक्रेट्स हमको बताए हैं और जो हमने अनुभव किए हैं, वो सीक्रेट हम शेयर कर रहे हैं। तो ज्ञान कैसे मदद करता है? नंबर वन, कि परमात्मा ने हमको बताया कि ये विश्व नाटक अभी इस ऐसी अवस्था में है जहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी होने वाली है। तो मेरे अंदर पहला तो ये प्रश्न नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ही होने वाला है। डे बाय डे इट विल बी टफ। क्यों टफ होने वाला है? क्योंकि आत्माओं की शक्ति खत्म हो चुकी है। तो जिसकी खत्म होती है शक्ति, तब उससे गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं। और जैसे आत्माओं की शक्ति खत्म हो गई है, प्रकृति की भी शक्ति तमोप्रधान अवस्था में है। तो जब प्रकृति भी तमोप्रधान अवस्था में है और आत्मा भी तमोप्रधान अवस्था में है, तो बहुत सारी गलतियां होगी, बहुत सारे परिस्थितियां ऐसी आएंगे जिसमें आपकी शक्तियों का टेस्ट होगा
जी,
आपको चेक करना होगा। तो ये मत सोचो कि ऐसा कब, ऐसा ही होने वाला है। मुझे सिर्फ इतना सोचना है कि इसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अपने आप को स्वीकार करना है कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अच्छी हूँ। एक्सेप्ट करो अपने आप को
जी,
क्योंकि परमात्मा ने हमको एक्सेप्ट किया है।
जैसे आपने एक नंबर वन बात बताई, दो बातें आपने बताई। एक में ये बताया जो चल रहा है उसमें क्यों ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब कि ये परमात्मा ने ये बताया कि ऐसा ही होने वाला है।
यस,
मेरा विचार ये है कि आज बहुत सारे लोग हम ऐसा देखते हैं कि क्यों हो रहा है ये प्रश्न अगर नहीं पूछते तो उनको लगता है हम अपना लॉजिक नहीं चला रहे, फिर भावना में बह रहे हैं हम। ये एक थोड़ा सा रहता है बातों में, जो स्पेशली बहुत रैशनल थिंकिंग वाले हैं या एजुकेटेड क्लास है, उनको ऐसा लगता है हम प्रश्न पूछे बार बार, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन आपने जो कहा उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहूंगी उसका।
इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा है।
हाँ,
हम ये कह रहे कि लोग क्वेश्चन में ही ज्यादा अटके हुए, क्यों है
जी।
तो कारण आप जरूर ढूंढो पर निवारण के ऊपर एनर्जी लगाओ। मैनेजमेंट में जो भी आप कहते हैं, हमारे पास दो प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड। तो आपकी एनर्जी आप प्रॉब्लम में जितना लगा रही है उससे ज्यादा सोल्यूशन पर लगाओ,
है ना।
कारण के बजाय आप निवारण के बारे में सोचो ना, उस समय क्या करना चाहिए।
कई लोगों को सिर्फ क्रॉस करना होता है।
हाँ, नहीं, कारण ढूंढ के निकालना चाहिए अगर वो करेक्टेबल है, लेकिन कई बार हमको कारण नहीं पता चलता है। अल्टीमेटली अगर आपको सोल्यूशन ही निकालना है तो क्यों ना हम अपनी एनर्जी सोल्यूशन पर लगाएं,
उसमें जितना बहुत वेस्ट जाता है,
उसमें बहुत वेस्ट हो रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं, मेरे घर वाले ही ऐसे क्यों, मेरे को तो लोग बोलते मुझे ही डायबिटीज क्यों हुआ है, मुझे ही ब्लड प्रेशर, मेरे पड़ोसी को क्यों नहीं हुआ। तो ये बहुत क्यों में न जाके, क्योंकि ये क्यों का ना क्यों लग जाता है फिर, और फिर ये क्यों आपको परेशान करेगा। उसके बजाय जो सिचुएशन है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यही है अप्रोच की, वो सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है वर्तमान में, उसके ऊपर आप फोकस करो
जी।
ये हमको परमात्मा बताया था कि जो हुआ है ना उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ फाइट मत करो
जी।
क्योंकि फाइट करने से क्या होगा कि आपकी निगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ेगी
जी,
और फिर उसमें आप सोल्यूशन ढूंढ पाना मुश्किल होगा
जी।
तो उसके बजाय सोल्यूशन के ऊपर फोकस करो कि क्या किया जा सकता है, इसमें व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल। तो हम उस ऑप्शन के ऊपर आ रहे हैं, एक की परिस्थिति है और एक मैं हूं। जो आपने शुरुआत किया, तीन प्रकार के लोग देखते हैं, जब हम अंदर से निगेटिव सोचते या कमजोर होते तो वो परिस्थिति हमारे लिए समस्या बन जाते हैं, और हमेशा हम रोते रहते पता नहीं ये समस्या क्यों आई, क्योंकि हम कमजोर है। पर वही परिस्थिति जो आपने कहा स्थिर बुद्धि वाला, उसको चैलेंज के रूप में लेता है, वो इसी परिस्थिति को एक अवसर बना देता है, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है और वो सक्सेसफुल बन जाता है। तो यही बात आपको सीखनी है। तो मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ कि जब मेरा फाइनल MBBS का रिजल्ट आया, जो हमने शायद पहले भी देखा
जी,
तो उसमें फेलियर था, आई वॉज फेल्ड इन टू सब्जेक्ट, मुझे दो सब्जेक्ट में फेल किया गया था, इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी टू हैंडल। लेकिन उसी को मैंने चैलेंज के रूप में न लेके, आज वही मैं अनुभव कॉलेज के स्टूडेंट को सुनाता हूँ, तो कॉलेज के स्टूडेंट जो डिप्रेशन में है, जिनको कम मार्क्स मिले हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमको 90 में नहीं मिला, अरे आप पास तो हुए, 80 मिले 85 मिले तो भी रो रहे,
वो अवसर प्रदान हो गया पूरा।
तो मेरे को देखा कि वही सिचुएशन आज इन लोगों को प्रेरणा दे रही है मेरे लिए
जी।
तो उसी सिचुएशन को मैं जब सुनाता हूँ कि मैं लाइफ में फेल हुआ हूँ, तो वो देखते हैं कि अरे डॉक्टर सचिन फेल हुए थे, लेकिन आज वो अच्छे स्पीकर है, सब जगह पे जाकर सबको प्रेरणा देते हैं, पूरे भारत में व्यसन मुक्ति का प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो फेल होना गलत नहीं है, फेल कोई भी हो सकता है, सक्सेस एंड फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। जितने लोग बड़े पोस्ट पे गए हैं, जरूरी नहीं हमेशा वो पास होते गए, उनके लाइफ में फेलियर भी आया होगा। तो फेलियर के बाद आपको बाउंस बैक होना है, तभी हो सकते जब अंदर से मजबूत है, और मजबूत या ताकतवान आप योग से होते हैं। तो जैसे आपका योग रहता है परमात्मा से, तो आप उस समय सॉल्यूशन को ढूंढते हैं और उसी परिस्थिति को आप अवसर बना लो, वो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, ऐसे मुझे लगता है
जी। बहुत सुंदर बात बताई, स्थिरता जो हम कहते हैं, जैसे आपने कहा क्यों नहीं पूछना है हमको, परिस्थिति अनप्रेडिक्टेबल है, रोज हमारे साथ चैलेंजेस हैं, तो ज्ञान से हम इसको
समझ सकते हैं परिस्थिति, और अपने आप को समझा सकते हैं। होता क्या है, जब परिस्थिति आती है ना, तो या तो मेरा दिमाग चलता है या दिल चलता है। जो दिल वाले हैं, जो इमोशनल है, वो रोएंगे, अरे रे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, भगवान को दोष देते या डेस्टिनी को दोष देते कि मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरे नसीब में, रोते हैं, खुद भी रोते हैं, सबको रुलाते हैं। और दूसरे दिमाग वाले हैं, वो सोचते हैं इसने ऐसा किया होगा इसलिए ऐसा हुआ, मैं भी देखता हूँ ये क्या करता है, वो दिमाग से सोचते हैं, उनका लॉजिक अलग तरीके से काम करता है। तो हमको यहाँ पे बीच में आना चाहिए, ना दिमाग ना दिल, दोनों का यूज करना चाहिए, भावना और विवेक का। और अगर आपकी भावना बहुत चल रही है, इसमें आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे, तो उसको ज्ञान के आधार पर समझाओ कि हर परिस्थिति जो आती है कुछ ना कुछ मैसेज लेके मेरे पास आई है,
ठीक
है ना, मुझे इस परिस्थिति में धीरज रखना है, मुझे इस परिस्थिति में हिम्मत रखना है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहती है, ठीक है ना, ये परिस्थिति भी जाने वाली है, तब तक मुझे हिम्मत रखना है, परमात्मा को साथ में रखना है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्ति से मैं इस परिस्थिति को पार कर सकूं, ये विचार दिल को समझाने के लिए।
बराबर, मतलब एक तरह से हमको बार बार उनकी छत्र छाया में जाते हुए एक अफर्मेशंस अपने आप को देना है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हर इंसान को एक सहारे की जरूरत है, वो सहारा अगर नहीं है तो टूट जाता है। अगर कोई लगता है हमें, बस एक थॉट है मेरे पीछे कि हाँ कोई मेरे पीछे है, कोई मुझे बार बार सपोर्ट करने वाला है, सपोर्टर है बहुत बड़ा, वो थॉट मुझे आगे बढ़ाता है।
यस, और परमात्मा से बड़ा सहारा कोई हो नहीं सकता।
हाँ, तो राजयोग में जो बार बार आप मेंशन करते हैं, ये बात यहाँ सबसे बड़ी मुझे ये लगी कि आप परमात्मा को सहारा बनाते हैं। कुछ एपिसोड पहले भी हमने ये बात की थी कि परमात्मा निराकार है, हमें दिखते नहीं है, हम उनको सहारा कैसे समझे? तो आप ये जो बात बता रहे हैं कि ज्ञान से हमें योग लगाना है, मतलब ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान कहाँ से मिलता है आपको, कैसे मिलता है? मतलब आपको मेडिटेशन में इंट्यूशन होता है, कुछ आवाज सुनाई देती है या फिर कोई सुनाता है?
दोनों बातें हैं। सबसे पहले तो परमात्मा, जैसे आपने कहा, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, तो उसको अपना शरीर नहीं है, तो उसको ये ज्ञान देना है तो उसको किसी शरीर का आधार लेना पड़ता है। और शास्त्रों में वर्णन है कि ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना हुई, तो परमात्मा जिस साकार शरीर में आकर, वृद्ध तन में आकर, जिसके मुख के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, उस शरीर का कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा है, है ना, जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो उनके मुख के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसको हम ब्रह्मा कुमारी में मुरली क्लास कहते हैं। तो मुरली कोई काठ की मुरली नहीं है। शास्त्रों में जो गायन है कि परमात्मा जब मुरली बजाते थे तो सभी भाग कर आते थे, अभी लकड़ी की मुरली नहीं है ये, परंतु ये ज्ञान की मुरली, क्योंकि परमात्मा की महिमा है कि वो ज्ञान का सागर है
जी।
और वो भाग्य विधाता है, वो चमत्कार ऐसे नहीं करता, उसका चमत्कार है उसका ज्ञान। और ज्ञान के आधार पर जो आत्माएं अपने अंदर शक्ति भरती है, दिव्य गुण धारण करती है, वही श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा जो ज्ञान देता है ब्रह्मा के द्वारा, वो कंपाइल किया हुआ है और वो मुरली क्लास ब्रह्मा कुमारी शाखा के हर सेंटर पर रोज चलता है, और उसमें हमको परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य सुनने को मिलते हैं। और उसको सुन सुन के जो आप स्थिरता की बात बार बार कर रहे हैं, दिल और दिमाग का बैलेंस कह रहे हैं, संतुलन, वो हमारे अंदर आने लगता है।
ओके,
तो वो परमात्मा के महावाक्य है,
मतलब हमको बेसिकली वो सहारे का एक्सपीरियंस होता है कि कोई हमसे बात कर रहा है डायरेक्ट।
एग्जैक्टली, देयर यू आर। जब हम वो महावाक्य सुनते हैं किसी के मुख के द्वारा, बहन सुना रही है, भाई सुना रहे, तब ऐसे लगता है कि परमात्मा हमसे बात कर रहा है, और उसके अंदर बहुत सारी गुह्य बातें रहती है, पूरी सृष्टि की कहानी रहती है, हमारी भी कहानी रहती है, और वो सुन सुन के हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा होता है, नहीं मैं ही था, मैं ही सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, मेरी शक्ति अभी कम हो गई, मुझे ही वापिस सतयुग में फिर से 16 कला संपूर्ण बनना है, और मैं बना था, और हर कल्पों में ये रिपीट होता है, तो मैं ही था और मैं अभी हूँ और मुझे फिर से बनना है, तो मैंने जो हर बार किया अभी भी मैं कर सकता हूँ। तो एक आत्मविश्वास मुझे मिलता है कि यस, भले वर्तमान समय परिस्थिति कठिन है, चैलेंजिंग है, लेकिन परमात्मा की मदद से मैं फिर से अपने अंदर वो गुण और शक्तियां धारण कर सकता हूँ जैसे मैंने कल्प पहले किया था। तो वो आत्मविश्वास मुझे श्रेष्ठ कर्म या हिम्मत या धीरज रखने में मदद करता है
जी। मतलब मुरली से आप हर रोज बात करते हो?
यस,
इन शॉर्ट
मुरली से भी करते हैं वो क्लास के वक्त, और अदरवाइज भी जब हम खाली रहते हैं तब भी हम अपने दिल की बात उससे शेयर करते हैं, और उससे जो प्रेरणा आती है वो भी हम महसूस करते हैं। और वो प्रेरणा आने का प्रूफ क्या है कि जब वो आती है प्रेरणा, वो सड़न होती है और वो इतनी पावरफुल होती है कि उसके द्वारा जो भी आप करने वाले उसमें आपको सफलता मिलनी है, तब समझो कि वो प्रेरणा ऊपर से है, नहीं तो कई बार हमारे मन की बातें भी होती
हैं। हाँ, इस बात पर हम आगे चर्चा जरूर करेंगे, अभी हमारा समय पूरा होने पर है, जाने के पहले हम मेडिटेशन जरूर करना चाहेंगे।
ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो सवाल आपने पूछा वो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि परिस्थिति आती है जीवन में, और परिस्थितियां डिफिकल्ट होती है, हम कई बार हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन वहां पे स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्थित प्रज्ञा अवस्था जो कही है वो ज्ञान के आधार पर आती है। तो हम परमात्मा को हम ज्ञान का सागर के रूप में अनुभव करेंगे, और उससे ज्ञान की किरणें हम लेंगे और अपने आप को स्थिर करेंगे। ये मेडिटेशन अभी हम करते हैं, अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे और महसूस करेंगे कि मेरा पूरा शरीर बिल्कुल हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट और पीठ की मांसपेशियां, चेहरा और गर्दन शांत और रिलैक्स। जैसे ही मेरा शरीर हल्का होते जा रहा है, मेरा ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में स्थिर होते जा रहा है, और मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं एक दिव्य प्रकाश हूं, इस शरीर से बिल्कुल अलग। एक दिव्य सितारा हो। इस शरीर को धारण किए हो, ये शरीर एक वस्त्र है और मैं इसको धारण करने वाले, ये शरीर भारी है पर मैं बिल्कुल हल्का हूं, शांत स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, मैं महसूस कर रहा हूं कि जैसे मैं दिव्य सितारा हूं वैसे मुझ आत्मा के पिता परमात्मा भी दिव्य सितारा है और पांच तत्वों से पार रहते हैं। इस परम धाम शांति धाम जो मेरा असली निवास स्थान है वहां से परमात्मा शिव बाबा से शांति का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश मेरे ओर आ रहा है और जैसे ये प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है मैं शांत होता जा रहा हूं। ज्ञान के सागर, परमात्मा की संतान, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूं। मेरे अंदर संपूर्ण सृष्टि चक्र का ज्ञान समाया हुआ है, परमात्मा का ज्ञान मेरे अंदर भरपूर हो रहा है। इस ज्ञान के आधार पर मैं अपने दिल और दिमाग को समझा सकता हूं। ये ईश्वरीय ज्ञान दिव्य और अलौकिक है जो मुझे हर परिस्थिति में स्थिरता का अनुभव कराता है। चाहे परिस्थिति भी कैसे भी हो, मैं अपने दिल और दिमाग को संतुलित रख सकता हूं। मेरा मन और शरीर शांत और रिलैक्स है, ऐसे महसूस हो रहा है स्वयं ज्ञान का सागर परमात्मा शिव बाबा सदैव मेरे साथ है। हर परिस्थिति में वो मेरी छत्र छाया है, ये महसूस था मुझे स्थिरता का अनुभव कराती और मेरा आत्मविश्वास बढ़ते जाता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मैं अपना संतुलन बनाए रख सकता हूं, इसका मुझे विश्वास। शांति के सागर शिव बाबा से आने वाली ये प्रकंपन मुझ आत्मा को और शरीर को शांत स्वरूप अवस्था में ले जाए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल वेला मैं शांत हूं, प्रसन्न, ऐसे लगता है कोई भी परिस्थिति आए मैं उसमें विजय प्राप्त कर सकता हूं। मेरा विजय निश्चित है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, उस हर परिस्थिति में कल्याण समाया हुआ है, इसका मुझे अनुभव हो रहा है। शिव बाबा आपका दिल से धन्यवाद, जो आपने इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुझे दिया, हर समय मैं आपको सदैव साथ में रखूंगा और कैसी भी परिस्थिति हो उसमें स्थिर बुद्धि बनाकर उसमें विजय प्राप्त करूंगा। मैं विजयी हूं और सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। आज की पूरी बातचीत में हमने ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये जानी कि किस तरह से परमात्मा एक साधारण शरीर का आधार लेते हुए मुरली द्वारा रोज आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, रोज आपके साथ बात करते हैं और हम भी कर सकते हैं डेफिनेटली। आपकी पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।
आज हमने ये देखा कि दिमाग अगर स्थिर है तो तो परिस्थितियां आसानी से सुलझ जाती है, हम जानते हैं, लेकिन दिमाग को स्थिर कैसे करना, ज्ञान के आधार से, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, केवल योग नहीं लेकिन ज्ञान और योग, ये शब्द बार बार यूज किया डॉक्टर सचिन ने, और बताया कि किस तरह से ज्ञान परमात्मा से डायरेक्ट मिलता है और वो ज्ञान मुरली के द्वारा जो प्राप्त होता है उसको हम यूज करते हुए हमारे दिमाग को स्थिर रख सकते हैं अनेक परिस्थितियों के अंदर। तो आप इस पर विचार कीजिए, अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फोन से संपर्क कीजिए। नए सीक्रेट के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।